आयशा राजवंश एम्पायर में राघव मित्तल से मिली थी। वो उसे देखते ही पहचान गई थी कि वो वही शख्स था जो कियारा का भाई था। कल कियारा की मदद इशिका ने की थी, फिर भी मौके का फायदा उठाते हुए आयशा ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया था। राघव ने इशिका को ध्यान से नहीं देखा था, उसने इस बात का फायदा बखूबी उठाया था। वहीं राघव ने इशिका को मैसेज भेजा कि वो आज रात उसे और उसके मंगेतर को डिनर पर इनवाइट करना चाहता है। उसके पास इशिका के नंबर तो थे, लेकिन वो आयशा को कियारा का हेल्प करने वाला शख्स समझ रहा था। वहीं इशिका इस वक्त ओशन यूनिवर्सिटी की मीटिंग में थी। उसने देखा कि उसका मोबाइल बजा। इशिका ने मैसेज चेक किया तो उसे याद आया कि ये नंबर कियारा के भाई का था। फोटोग्राफिक मेमोरी होने की वजह से उसे चीज़ें जल्दी याद हो जाती थीं। इशिका ने तुरंत रिप्लाई देते हुए कहा, आई थिंक इसके लिए वीकेंड सही रहेगा। इशिका भी इस डिनर को लेकर एक्साइटेड थी, क्योंकि उस दिन काफ़ी कुछ हुआ था और उसके बाद उसे कियारा से मिलने का मौका नहीं मिला। राघव को रिप्लाई करने के बाद अचानक इशिका को कुछ एहसास हुआ। वो मन ही मन बोली, एक सेकंड, इसने मेरे मंगेतर का जिक्र किया है, ये मेरे कौन से मंगेतर से मिल लिया? इशिका इस बारे में उसे आगे कुछ पूछ पाती उससे पहले ओशन यूनिवर्सिटी के चांसलर ने उससे कहा, डॉक्टर मर्चेंट, आप इसी कॉलेज में पढ़ी हुई हैं, आप तो अच्छे से जानती हैं कि हमारे एथिक्स कैसे हैं। मैं आपको यूनिवर्सिटी में लेक्चर लेने के लिए इन्वाइट करना चाहता हूँ, उम्मीद है आप मना नहीं करेंगी। कॉलेज के डीन से अलग चांसलर एक ईमानदार आदमी था। इशिका ने उनकी तरफ देखा और सख्ती से कहा, मैं पहले ही आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रही थी। आज मैं जो भी हूँ वो प्रोफेसर मिलर की वजह से हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उन्हें ही निकाल दिया है। मुझे उनके पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है, जिनका एक साल बर्बाद हो जाएगा। उसकी बात सुनकर डीन का चेहरा सख्त हो गया। वो तुरंत बोला, डॉक्टर मर्चेंट, ये सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से हुआ है, मुझे नहीं पता था कि आप डॉक्टर मर्चेंट हो, मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। चांसलर ने उसे तुरंत टोकते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, इनकी जगह कोई नॉर्मल स्टूडेंट भी होता तो हम उसे बिना प्रूफ मिले कॉलेज से नहीं निकाल सकते थे। रही बात प्रोफेसर मिलर की, तो वो अपने काम में बेस्ट है, मुझे नहीं लगता कि हमें उनके लेवल का कोई दूसरा प्रोफेसर मिल पाएगा। आप क्या सोचती हैं डॉक्टर मर्चेंट, बोलते हुए चांसलर ने इशिका की तरफ देखकर पूछा। जी बिल्कुल, इशिका ने शांत लहजे में कहा। अब इशिका को थोड़ी संतुष्टि हुई, उसकी वजह से प्रोफेसर मिलर को यूनिवर्सिटी से नहीं निकाला जाएगा। उसने चांसलर के साथ ही डील की और फिर बाहर आ गई। आयशा भी वहीं पर आई हुई थी। उसने देखा कि किस तरह चांसलर इशिका की तारीफ कर रहा था और उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर उसे इशिका से जलन होने लगी, मन ही मन उसे उस पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। थोड़ी देर बाद इशिका मीटिंग से बाहर आई, तब तक दिशांक उसके लिए गाड़ी लेकर आ चुका था। दिशांक उसके पास आता उससे पहले आयशा जल्दी से इशिका के पास गई और नफरत भरे शब्दों के साथ बोली, तुम जानती हो इशिका कि मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करती हूँ? इशिका ने उसे देखकर बोरियत भरा चेहरा बनाया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था आयशा उससे प्यार करती है या नफरत, इशिका ने तो उसे जवाब देने तक की जहमत नहीं उठाई। उसके कुछ ना बोलने पर भी आयशा ने बोलना जारी रखा। वो आगे बोली, मालविका आंटी से पता चला कि तुम्हारे लैपटॉप का पासवर्ड मेरी मॉम की बर्थ डेट है। अब इशिका को समझ आ गया था कि मालविका ने उसका लैपटॉप कैसे अनलॉक कर लिया होगा। इशिका राधिका से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने ऐसा किया था। इशिका को चुप देखकर आयशा ने आगे कहा, क्या तुम्हारी खुद की मॉम नहीं है जो तुमने मेरी मॉम की डेट ऑफ बर्थ को अपना पासवर्ड बनाया? मुझे अच्छे से पता है कि तुम कैसे मेरी मॉम को अपने इमोशंस के जाल में फंसा रही हो। एक बात अच्छे से याद रखना, तुम मेरी मॉम को मुझसे छीन नहीं पाओगी। इस तरह दूसरों की मॉम पर नजर रखना बुरी बात होती है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मालविका आंटी तुमसे प्यार नहीं करती। इशिका उसकी तरफ देख रही थी जबकि आयशा बोले जा रही थी। उसने आगे कहा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरी जगह लेना चाहती हो। एक बात याद रखना कि मेरी मॉम की लाइफ में तुम मेरी जगह कभी नहीं ले पाओगी। उम्मीद है कि तुम इस सपनों की दुनिया से बाहर आओ और हकीकत से रूबरू हो जाओ। तुम्हारी माँ मालविका दास है और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। इशिका आयशा की बात सुनती रही। जब दिशांक गाड़ी लेकर आ गया तब इशिका बिना कुछ बोले उसकी स्पोर्ट्स कार में जाकर बैठ गई थी। हालांकि आयशा की बातों से वो अंदर ही अंदर काफी अपसेट हो गई थी। इशिका ने अपने मन में कहा, क्या गलत कहा उसने, मुझे हमेशा से राधिका आंटी पसंद थी और मैं यही सपना देखा करती थी कि काश मैं आयशा होती तो मुझे राधिका आंटी का प्यार मिलता। राधिका आंटी उसे कितना प्यार करती हैं और उसे कितना अच्छे से भी रखती हैं। बचपन में वो उसके बाल बनाती थी, उसके लिए कुकिंग करती थी और आज भी उसकी कितनी परवाह करती हैं। मेरी ही किस्मत इस मामले में इतनी खराब क्यों है? इशिका को अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। उसने अपना लैपटॉप निकाला और तुरंत पासवर्ड बदल दिए थे। हालांकि उसे ऐसा करते वक्त दिल में एक दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो राधिका से दूर हो रही हो। इशिका की आंखों में आंसू थे। उसने तुरंत खुद को संभाला और अपनी आंखों को साफ कर लिया था। वहीं दिशांक का पूरा ध्यान ड्राइविंग करने में था। अचानक उसका मोबाइल बजा। दिशांक ने कॉल रिसीव किया तो सामने से एक आदमी की आवाज आई,
सर, मुझे पता चल गया है। मैं आशीष दास का पीछा कर रहा था। मुझे उसके बारे में काफी कुछ पता चला है। इशिका ने ही आशीष के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। उसकी बात सुनकर दिशांक ने इशिका की तरफ देखा। जब से वो गाड़ी में बैठी थी तब से खोई हुई लग रही थी। दिशांक ने स्पीकर ऑन किया और बोला, मेरी बॉस मेरे साथ ही है, तुम जो कह रहे हो वो उसे सुन पाएगी, आगे बोलो। कॉल पर मौजूद शख्स अब थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करने लगा था। वो सब बताते हुए बोला, हमें पता चला है कि आशीष दास काफी गैम्बलिंग करता है, स्टॉक में भी पैसे लगाता है और जिस तरह से वो पैसे उड़ाता है उस हिसाब से उसे महीने के लगभग 1 से 2 लाख रुपए तक का नुकसान पक्का होता है। पिछली बार उसने कसीनो में लगभग 5 लाख रुपए का घपला किया था। वो लोग तो उसका पैर तोड़ने वाले ही थे, लेकिन आप जानते हो कि वो बचने के लिए क्या चिल्ला रहा था? क्या? दिशांक ने जल्दी से पूछा। उसने कहा कि मिस सिंघानिया मेरी भांजी है, कॉल पर मौजूद शख्स ने बताया। उसकी बातें सुनकर ऋषिका हैरान जरूर हुई थी, लेकिन उसने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आशीष उसके पास भी पैसे मांगने के लिए आता था और उसे यही कहता था कि तुम भी मिस सिंघानिया हो, सिंघानिया फैमिली से बिलोंग करती हो, तो अपने बाप से पैसे क्यों नहीं मांगती? दिशांक ने इशिका की तरफ देखकर पूछा, क्या वो आपके पास पैसे मांगने अभी भी आता है? नहीं, उस दिन के बाद नहीं आया। जरूर आयशा ने उसे पैसे दे दिए होंगे, इशिका ने जवाब दिया। इशिका की बात सुनकर कॉल पर मौजूद आदमी ने कहा, हाँ वो लड़की उन्हें पैसे देती रहती है, क्योंकि हमने उसका बैंक स्टेटमेंट भी चेक किया था। हर महीने उसे 1 लाख रुपए भेजती है और इतने सालों में पता नहीं उसने उसे कितने पैसे भेज दिए होंगे। ऐसी क्या वजह रही होगी जो आयशा उसे पैसे देने के लिए मजबूर हो रही है? उसकी बात सुनकर ऋषिका ने आईज रोल करके कहा, शायद यही वो बात है जो मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि आखिर आयशा उसे पैसे क्यों दे रही है और तुम मुझसे ही सवाल कर रहे हो।
अरे आप गुस्सा हो गई, मुझे आगे की बात तो बताने दीजिए, कॉल पर मौजूद आदमी ने हल्के तरीके से कहा। मैंने उसके बिहेवियर के बारे में पता लगाया था। वो थोड़ा अजीब आदमी है, लोगों से ज्यादा बात नहीं करता है। मैंने एक तरीका ढूंढ निकाला है जिससे हम सच का पता लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? इशिका ने हैरानी जताते हुए पूछा। कल कसीनो में आशीष के साथ फ्रॉड हुआ है और उसने लगभग 5 करोड़ रुपए वहां गंवा दिए हैं। वो मदद के लिए आयशा के पास जरूर जाएगा और आयशा इतनी जल्दी इतने पैसे नहीं जुटा पाएगी, क्योंकि मिस्टर सिंघानिया की उस पर नजर रहती है। उसका अगला ऑप्शन आप होने वाली हैं। आप समझ सकती हैं कि आपको क्या करना है? उस आदमी ने इशिका को अपना प्लान समझाते हुए कहा। कहीं इन सब के पीछे तुम तो नहीं? इशिका ने सख्ती से पूछा। वो आदमी अफसोस जताते हुए बोला, अरे आप नाराज मत होइए, मेरा बस एक छोटा सा प्लान है जिसमें मैंने उसे फंसाया है। मैं कोई इल्लीगल काम नहीं करता और मुझे अच्छे से पता है आपको इल्लीगल काम करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। मैं तो ड्रिंक भी नहीं करता और ना ही गैम्बलिंग करता हूँ। वो इशिका को अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा था। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, पर कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना, मैं बचाने के लिए नहीं आने वाली, इशिका ने उसे चेतावनी देते हुए कहा और फिर कॉल कट कर दिया। इशिका भी आशीष और आयशा के रिश्ते के बारे में पता लगाना चाहती थी, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहती थी कि उनकी हरकतों की वजह से राधिका को कोई चोट ना पहुंचे। वो वैसे भी काफी कमजोर और बीमार रहती थी। इशिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी तभी उसका मोबाइल बजा। राधिका ने उसे मैसेज करके लिखा था, डॉक्टर मर्चेंट क्या आप बिजी हैं? एक्चुअली मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था, आई नीड योर हेल्प। मैं फ्री हूँ, बोलिए आपको मुझसे क्या काम है? इशिका ने जवाब देते हुए लिखा। राधिका ने तुरंत वॉइस मैसेज भेजा। इशिका उसे सुनने लगी। उसने कहा था, एक्चुअली आपका एक प्रोजेक्ट एक लड़की ने चुरा लिया है, उसका नाम इशिका है। प्लीज आप राजवंश एम्पायर में बात कीजिए और कहिए कि इन सब में इशिका का कोई फॉल्ट नहीं है। देखिए उसकी कोई गलती नहीं है और ये सिर्फ एक गलत फहमी है। वो लड़की मेरी बेटी की तरह है। आप मुझसे मिलिए, मैं आपको पूरा मैटर समझा दूंगी, पर प्लीज आप उसे बेगुनाह साबित करवा दीजिए। वॉइस मैसेज सुनने के बाद इशिका इमोशनल होने लगी। राधिका उसके बारे में इतना सोच रही थी और वो उसे अपनी बेटी तक समझती थी। इशिका की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके कहा, ठीक है मैं आपके घर आ रही हूँ, अभी इसी वक्त हम मिलते हैं। राधिका तक ये सच्चाई अब तक पहुंची नहीं थी कि इशिका ही डॉक्टर मर्चेंट है। उसके बाद इशिका ने सख्ती से दिशांक से कहा, मुझे राजवंश हाउस ले चलो, मुझे राधिका जी से मिलना है। दिशांक ने उसकी बात पर हामी भरी और गाड़ी सिंघानिया विला की तरफ मोड़ ली। वहीं दूसरी तरफ राधिका ने इशिका का मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे पर हल्की घबराहट के भाव आ गए। उसने धीरे से कहा, डॉक्टर मर्चेंट अभी इसी वक्त घर आना चाहते हैं, उम्मीद है वो मेरी बात सुनकर गुस्सा नहीं हुए होंगे। वहीं उसके पास खड़ी श्रुति ने सारी बातें सुन ली थी। वो बोली, तुम उस लड़की के लिए और कितना करोगी? मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, फिर उसके लिए तुम डॉक्टर मर्चेंट तक को परेशान करने के लिए तैयार हो गई। तुम बहुत अच्छे दिल की हैं और लोग इसका फायदा उठाते हैं। राधिका काफी कमजोर और बीमार थी। मालविका ने क्या किया था ये किसी से छुपा हुआ नहीं था, फिर भी राधिका मालविका की बेटी के बारे में सोच रही थी।
थी। श्रुति ने राधिका की तरफ देखकर थोड़ा इमोशनल होकर कहा, आप उस औरत की बेटी की इतनी परवाह क्यों करती हैं जिसकी वजह से आपका घर बर्बाद हो गया। श्रुति की बात सुनकर राधिका का चेहरा नीचे की तरफ हो गया। आयशा और आदर्श घर पर नहीं थे तो ऐसे में वो अपने दिल की बात श्रुति से बता सकती थी। राधिका ने गहरी सांस ली और कहा, मैं खुद नहीं जानती। उसकी बात सुनकर श्रुति चौंक गई। राधिका ने आगे धीमी और कमजोर आवाज में कहा, मैं नहीं जानती कि मेरे दिल में उसके लिए इतना प्यार क्यों है। जब उसे पहली बार देखा था तो वो बहुत प्यारी लगी थी। दिल में यही इच्छा आई, मैं उसे दुनिया की सभी मुसीबत से बचा लूं, जैसे वो मेरी खुद की अपनी बच्ची हो। निस्वार्थ राधिका को देखकर श्रुति ने आह भरी। राधिका ने आगे कहा, याद है तुम्हें जब वो छोटी थी तब हमने उसे देखा था, वो कितनी प्यारी सी थी लेकिन उसके कपड़े मैले थे, तो हमें कितनी दया आई थी कि वो एक बुरी माँ के बीच फंस गई है। बेचारी को कितना मारा पीटा था मालविका ने। वो औरत एक शैतान है और न जाने क्यों मैं इशिका को उससे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। जो भी हो, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी माँ कैसी है और उसने क्या किया है। उसने घर छोड़ दिया था लेकिन कभी भी वो आपको थैंक्स कहने के लिए, आपका हालचाल पूछने के लिए नहीं आई, श्रुति ने सख्ती से कहा। राधिका का दिल अभी भी उन बातों पर यकीन करने का नहीं कर रहा था। उसने कहा, जरूर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। उसने मिस्टर राजवंश से बात करके मेरे लिए रूम अरेंज करवाया और मुझे वो दवाइयाँ मंगवा कर दी। वो बुरी हो ही नहीं सकती। राधिका इस बात को नहीं जानती थी कि इशिका उसकी बेटी है, लेकिन फिर भी एक माँ का दिल उसके लिए काफी बेचैन रहता था। वो इशिका के लिए एक ढाल का काम करती थी लेकिन ये चीज कोई नहीं समझता था। उसकी बातें सुनकर इमोशनल होने के बजाय श्रुति उसे गुस्से में घूर रही थी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते हैं इशिका की सच्चाई कब तक सामने आएगी। जिस दिन सच सामने आया, आयशा की जिंदगी उजड़ जानी है। बहुत हवा में उड़ रही है। चलिए पलकर समीक्षा कर देना। अगले पार्ट पर मिलते हैं।